जहां एक और कशिश सारी रात रजनी के साथ सुकून से सोई, वहीं ईशान की आंखों में नींद का कतरा तक नहीं आ सका। उसकी सारी रात जागते हुए और घाट को निहारते हुए बीती। सारी रात वो ना चाहते हुए भी कशिश के बारे में सोचता रहा। कई बार खुद से ही सवाल किया कि कशिश की नाराजगी से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों उसके आंसू उसे इस कदर व्याकुल कर रहे हैं, क्यों उसकी खामोशियां और ये दूरी उसे इतना बेचैन कर रही है। उसे बहुत सोचने पर भी किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं मिला। रात भर के जागरण के बाद उसने बालकनी में खड़े खड़े ही सुबह की गंगा आरती देख ली। फिर गंगा मैया को नमन करके कमरे में आया तो कशिश कमरे से निकलती नजर आई। उसने उसे आवाज़ लगाकर रोकने की सोची ताकि उससे बात कर सके, पर वो सोचता ही रह गया और उसके कुछ कहने से पहले ही कशिश कमरे से बाहर जा चुकी थी। ईशान जब नहाकर तैयार होकर नीचे आया तो अब भी रजनी ही उसका खाना लेकर आई। टिफिन भी उसने ही दिया, कशिश तो उसके सामने ही नहीं आई। ईशान जो उससे बात करना चाहता था, मायूस सा अपने काम के लिए निकल गया। कशिश सुबह का काम निपटाकर आज महिमा जी और कौशल्या जी के पास नहीं रुकी, सीधे कमरे में चली आई और वे दोनों बस उसे देखती ही रह गईं। कशिश कुछ बदली बदली सी, दुखी और उदास लग रही थी। ईशान और कशिश के बीच उस खामोश नाराजगी और कशिश की ईशान से बनाई दूरियां किसी से छुपी नहीं थीं। ये बात वे दोनों भी समझ रही थीं कि कुछ तो बात है और बात गंभीर है, पर उन्होंने कशिश को टोका नहीं। कमरे में आकर कशिश ने डोडो को अपने सीने से लगा लिया और जाने कितनी ही देर तक उससे बात करती रही, फिर बालकनी में चली आई। आज फिर बच्चे गली में खेलते नजर आए। कशिश मायूस सी उन्हें देखने लगी, खामोश बैठी गाना सुनकर अपना मन बहलाती रही। फिर वक्त होने पर शुभ्रा और शुभिका के लिए खाना बनाने चली गई। लंच के बाद उन्हें पढ़ाने बैठ गई। आज भी उसने रोज की तरह अपने सभी काम किए, पर हमेशा हंसती खिलखिलाती रहने वाली ये चहचहाती चिड़िया कशिश कल से एकदम खामोश हो गई थी और उसमें अचानक आया ये बदलाव सभी को संशय में डाले हुए था। शायद ये पहली बार था जब कशिश इतनी चुपचुप और उदास थी, वरना बड़ी से बड़ी मुश्किल और दुख में भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जहाँ कशिश के बदले व्यवहार से सब हैरान परेशान थे, वहीं दूसरी ओर ईशान का ध्यान आज किसी काम में नहीं लग रहा था। दिलो दिमाग पर बस कशिश छाई हुई थी। जो काम करने जाता वही खराब हो जाता, जिससे खुद पर ही खींच उठता। रघु और रामू भी हैरान थे कि हर काम पूरी लगन से और परफेक्टली करने वाले उनके भैया को आज अचानक क्या हो गया है कि एक काम ठीक से नहीं कर पा रहे। चाहकर भी ईशान अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी मन किसी काम में लग ही नहीं पा रहा था। सब काम खराब हो रहे थे। परेशान ईशान दुकान रघु और रामू को सौंपकर शाम को जल्दी घर चला आया। कशिश उस वक्त रामविलास जी, सुजीत जी के लिए चाय बना रही थी। दरवाज़ा शुभ्रा ने खोला और सामने खड़े ईशान को देखकर हैरानी से बोली, भैया आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी चला आया, ईशान ने साफ छूट कहा, क्योंकि सच तो उसके खुद के समझ से बाहर था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके झूठ को सच समझते हुए शुभ्रा ने सिर हिलाते हुए खोए स्वर में कहा, आपकी तबीयत बिगड़ गई और भाभी को भी जाने क्या हो गया है, ना बात कर रही है ना हंसी मजाक कर रही है, एकदम उदास हो गई है, लगता है उनकी भी तबीयत खराब हो गई है, मासूम शुभ्रा खुद से ही अंदाजे लगाने लगी। कशिश के बारे में सुनकर ईशान का मन एक बार फिर बेचैन हो गया। उसे अब कैसे भी करके कशिश से बात करनी ही थी। उसने अपने दिमाग के घोड़ों को दोबारा और अगले ही पल अपना सिर पकड़ते हुए बोला, शुभ्रा अपनी भाभी को कहना कि चाय बना कर ले आए मेरे लिए, सर बहुत दुख रहा है मेरा तो मैं कमरे में जा रहा हूँ। शुभ्रा ने झट से सिर हिला दिया। ईशान सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और कमरे में जाकर बेचैनी से यहाँ से वहाँ चहलकदमी करते हुए कशिश का इंतजार करते हुए सोचने लगा कि क्या कहेगा उससे। दूसरी ओर शुभ्रा उछलते हुए किचन में पहुंची और दरवाजे को पकड़कर लटकते हुए कशिश को पुकारा, भाभी। कशिश ने तुरंत पलटकर उसे देखा, भाभी भैया के सर में दर्द हो रहा है तो उन्होंने आपको चाय लेकर कमरे में बुलाया है। शुभ्रा ने तो ईशान की कही बात कशिश को बता दी, पर उसकी ये बात सुनकर कशिश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने अविश्वास भरी नजरों से उसे देखा और अचंभित सी बोली, तुम्हारे भैया इतनी जल्दी आ गए? शुभ्रा ने सवाल पर तुरंत सिर हिला दिया, हाँ भैया की तबीयत जरा ठीक नहीं इसलिए जल्दी आ गए। ईशान की तबीयत खराब है ये सुनकर कशिश परेशान होने की जगह मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, उस 10 सिर वाले रावण की तबीयत को क्या होना है, एक बार उसे जमकर फटकार लगाएंगे तो उसका गुस्सा देखकर तबीयत अपने आप सीधी राह पर चलने लगे और मजाल हो जो दोबारा जरा भी इधर से उधर हो। मन ही मन गुस्से में भुनभुनाने के बाद उसने शुभ्रा को देखकर सिर हिला दिया और चाय बनाने लगी। कुछ देर बाद उसने सबके लिए चाय कप में निकाली और सारे कप ट्रे में रखकर बाहर चली आई। कशिश ने चारों बड़ों को चाय दी, शुभ्रा और शुभिका ने भी एक एक कप उठा लिया। अब ट्रे में बस एक ही कप रह गया था और वो ईशान के लिए था, जिसे देने के लिए कशिश को कमरे में जाना था, पर शायद वो जाना नहीं चाहती थी।
कशिश ने सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसने शुभिका से मदद लेने का फैसला किया। शुभिका, ये चाय अपने भैया को दे आओ, फिर चाय पी लेना, मुझे खाना बनाना है। शुभिका ने बेफिक्री से सिर हिलाया और ट्रे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। चारों बड़ों ने एक दूसरे को देखा, फिर जाती हुई कशिश को देखने लगे। ईशान अभी बेचैनी से यहाँ से वहाँ चहलकदमी करते हुए बड़ी ही बेसब्री से कशिश का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो ऐसा लगा मानो दरवाजे के साथ जैसे ही किसी ने उसके दिल पर भी दस्तक दे दी थी। उसकी धड़कनें एकाएक बढ़ गईं। उसने झट से पलट कर देखा, इस उम्मीद से कि कशिश आई होगी और अब आखिरकार वो उससे बात कर सकेगा। पर जैसे ही नज़र सामने पड़ी, उसकी सारी उम्मीद कांच के घरौंदे जैसे एक झटके में टूट कर बिखर गई। दरवाजे पर खड़ी शुभिका को देखकर उसके दिल की धड़कनें मायूसी से धीमे धीमे चलने लगी। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा और हैरानगी से बोला, तुम चाय लेकर क्यों आई? कशिश कहाँ है? भाभी खाना बना रही है और उन्होंने मुझे कहा कि आपको चाय दे दो, तो मैं आ गई, शुभिका ने बेफिक्री से जवाब दिया और अंदर आकर चाय का कप टेबल पर रखकर वापस चली गई। ईशान ने चाय के कप को देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही हो अब तुम, जानबूझकर मेरे सामने नहीं आ रही, नजरअंदाज कर रही हो मुझे, तो ठीक है, मत आओ अब तुम मेरे सामने, मत बात करो मुझसे, अब मैं भी कोशिश नहीं करूंगा। वैसे भी सारी गलती मेरी नहीं थी और मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था जो इतनी अकड़ दिखा रही हो तुम। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए इतनी सर चढ़ रही हो ना, तो अब खाती रहो भाव और उसी से अपने पतीले जैसा पेट भर लेना, इसी बहाने मेरे घर का थोड़ा राशन तो बचेगा। ईशान खुद में बड़बड़ाते और कशिश पर झल्लाते हुए बुरा सा मुंह बनाया और गुस्से में टेबल पर रखा कप उठाया, लबों से लगा लिया, पर अगले ही पल उसे हड़बड़ी में होठों पर से हटा लिया और मुंह खोलकर हवा अंदर लेने लगा। असल में उसने कशिश को कोसने में ध्यान ही नहीं दिया और गर्मा गर्म चाय से उसका मुंह जल गया था बेचारे का, जिससे वो और ज्यादा खींच उठा। ये लड़की सच में मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, न चैन से जीने देती है और न सुकून से कोई काम करने देती है। मेरा दिमाग खराब किया हुआ है इस बिद्दी सी लड़की ने और अब मुंह भी जला दिया मेरा।
ईशान बेवजह ही कशिश पर भड़क गया, जबकि इसमें तो उस बेचारी का कोई दोष ही नहीं था। लापरवाही खुद से हुई और सारा गुस्सा कशिश पर फूट पड़ा। कुछ पल खिसियाया हुआ सा खुद में ही बड़बड़ाता रहा, फिर फूंक मार मार कर बड़े ही एहतियात के साथ चाय की चुस्की लेने लगा। कुछ देर बाद कपड़े लेकर कपड़े बदलने चला गया। इसके बाद ना ईशान नीचे गया और ना ही कशिश ऊपर आई। रात होने पर शुभ्रा ही उसे खाने के लिए बुलाने आई। आज फिर रजनी ने ही उसे खाना दिया। कशिश ने उसे अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, जिससे ईशान खींच उठा और मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो उसे कतई नहीं मनाएगा। दिमाग को तो डांट फटकार कर समझा दिया, पर दिल पर भला किसका जोर चला है? उसका दिल भी बेचैन था, खाना हलक से नीचे उतरने से इनकार कर रहा था। बेमन से आधा अधूरा खाना खाकर वो वापस कमरे में चला गया। आगे उफ क्या होगा बेचारे ईशान का, और कैसे मनाएगा वो कशिश मोहतरमा को जो उसका बहिष्कार किए हुए है।